जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक संख्या 2 पर 11 सितंबर 2016 को इस्कॉन मीरा रोड मुंबई में दिया गया।
गोपी जाना बाला भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आपके मंदिर का ये पहला ब्रह्मा उत्सव मनाया जा रहा है। आप सबने सहयोग दिया था मंदिर को तैयार करने में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान त्रिभुवनस्य ज्ञानञ्जन श्रीचैतन्य मनोभिस्तम सप्तमेन भूतले जय श्री कृष्ण चैतन्य आप सबके प्रयास से लगभग एक साल पूर्व इस राधा किनारे मंदिर का उद्घाटन हुआ था और आप सबके प्रयास से मंदिर बना और बहुत खूबसूरत मंदिर है। और दिन पे दिन मंदिर की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मैं आप सब भक्तों का भार प्रकट करना चाहता हूँ जिनके सहयोग से ये मंदिर बना था और आप सबके प्रयास से मंदिर बना। मुझे याद है सबसे पहले मंदिर था बाइंडर में, छोटा मंदिर था। कब?
86
समय बड़ी तेजी के साथ बीत जाता है। मुझे याद है जब हमने माइंडर में राधा गिरधारी की स्थापना की थी तो मुझे ये भी पता था 30 साल पूर्व। और पहले मंदिर छोटा मंदिर था माइंडर में, फिर ये स्थान प्राप्त हुआ और पहले फिर आस्ते आस्ते विचार बढ़ते गया और गेस्ट हाउस बना पहले फिर मंदिर। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रभुपाद जी की कृपा से इसका के भक्तों द्वारा विचार बढ़ते जा रहा है। जैसे आप जानते हो ये सब हम इसका उनकी सुवर्ण जयंती उत्सव भी मना रहे हैं। ये सर आपके मीरा रोड मंदिर का डबल सेलिब्रेशन है। एक तरह से है सुवर्ण जयंती का उत्सव दूसरी तरफ से है ब्रह्म उत्सव पहला है, और आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस्कॉन के भक्तों के द्वारा लगभग 650 मंदिर चल रहे हैं और सारे विश्व में जन्माष्टमी उत्सव भी हो रहा है। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में आया था, पहली बार चाइना जैसे देश में जन्माष्टमी उत्सव पूरे देश में मनाया गया। पर कल मुझे बीजिंग पीकिंग से एक शिष्य का फोन आया था, वो कह रही थी कि कल रथाष्टमी उत्सव बड़े धूमधाम से चाइना में भी मनाया। आज चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी से आज ही ज्यादा नगर निगम से वाला प्रचार विश्व के हर कोने में यह हरि नाम का उच्चारण होगा। तो भारत में भी कई संत महात्मा सोच रहे थे, हाँ भविष्यवाणी तो है वैसा सच नहीं निकलेगी, पर हमारे आचार्यों को पूरा विश्वास था कि वह भविष्यवाणी सफल हो सकती है, और उनके प्रयास से आज विश्व के कोने कोने में हरि नाम का उच्चारण हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया और शुद्ध संदेश का प्रचार किया, जिसके कारण आज पूरे विश्व में आप कृष्ण भगवान के भक्तों को प्राप्त कर सकते हो। तो आप सबसे निवेदन है कि आपने सहयोग दिया मंदिर बनाने में, और अब आप सहयोग दीजिएगा कृष्ण भक्ति की विधियों का पालन करने में और प्रचार करने में। तो आज हम सोच रहे थे आपको भागवतम के सातवें स्कंद के दो विशेष श्लोक पढ़कर सुनाए। आप सब लगभग घर में रहते हो है कि नहीं, ये श्लोक है सबके लिए, पर खास करके गृहस्थ के लिए जो घर में रहते हैं। आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हो कि हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है, पर अफसोस की बात है कि हम वैदिक शास्त्रों का पूरा लाभ नहीं उठा रहे। तो भागवतम के सातवें स्कंद में आदर्श गृहस्थ जीवन का वर्णन है। वैसे तो जैसे आप जानते हो वैदिक शास्त्रों के अनुसार समाज का विभाजन चार वर्णों चार आश्रमों में होना चाहिए। चार आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वर्णप्रस्थ संन्यास, तो चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम। पर हमारा सिद्धांत है दैवा वर्णाश्रम, जिसका संक्षेप में अर्थ यह है कि चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ या सन्यासी, हम सबका उद्देश्य क्या है, क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा। और सबसे उत्तम सेवा है निष्काम भाव से अगर आप सेवा करो और विनम्रता के साथ, जैसे कि परसों दसवीं थी, परसों तो राधा रानी जी के अनेक गुणों में एक गुण क्या है, राधा रानी सोचती हैं कि मेरे में कोई भक्ति की योग्यता नहीं है, सारे भक्त मेरे से ज्यादा अच्छे हैं, ये भाव होना चाहिए। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, सारे भक्त मेरे से अच्छे हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नादपि सुनिचे ना तरुण अपि सजना मन न मन देना कितना देखा। तो दैव वर्णाश्रम का अर्थ है चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, आपका भाव यह होना चाहिए जिसका भाव से भगवान की सेवा। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा, एक रूप से ये प्रश्न पूछे गए थे हमारे लाभ के लिए, हमारी भलाई के लिए। वैसे तो युधिष्ठिर महाराज आत्मज्ञानी थे, पर हमारी भलाई के लिए, खास करके मीरा रोड के भक्तों के लिए। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, तो हम वो प्रश्न भी पहले दो श्लोक आपको पढ़कर सुनाएंगे, फिर इस पर चर्चा होगी। खाली अनुवाद पहले श्लोक का।
महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे सुनो, हे महर्षि, कृपा करके बताइए कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से नहीं घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेश अनुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं?
अब दिलाइए अनुवाद पैदा, ध्यान से सुनेगा प्रश्न और उत्तर।
महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बताइए कि जीवन का लक्ष्य के ज्ञान से नहीं घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेश अनुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं?
इसका उत्तर अभी
तो दूसरा श्लोक में उत्तर देते हैं नारद जी। नारद ने उत्तर दिया कि हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयत्न न करके इस फलों को वासुदेव श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से बड़ी भांति सीखा जा सकता है। कृपा आप लोग दोहराइए। नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका का अर्जित करने के लिए कार्य तो करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वसुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भलीभांति सीख लेना चाहिए।
आपने ध्यान से सुना तो पहले तो अरे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे, तो भगवत में क्या है? प्रश्न उत्तर। भगवत गीता में भी वही है कि नहीं? प्रश्न उत्तर। अर्जुन अनेक प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। आप लोग जब स्कूल में थे तो शायद आपने किताबें पढ़ी होंगी, क्वेश्चन एंड आंसर, लेकिन ध्यान से पहले सब पढ़ते हैं। तो वैदिक शास्त्र में भी प्रश्न है और उत्तर है, और जो प्रश्न है ये पूरे समाज के लाभ के लिए है। भौतिक समाज में हम प्रश्न पूछते हैं, पर हम पूछते हैं प्रश्न हमारे स्वार्थ के लिए, है ना? हम पूछते हैं प्रश्न कैसे धन कमाए, कैसे सुविधा मिले, पर संत महात्मा जब प्रश्न पूछते हैं पूरे मानव समाज के सुधार के लिए, लाभ के लिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा पहले हम तो गृहस्थ आश्रम है और हमें जानना चाहते हैं कैसे वैदिक शास्त्र पर आधारित घर में रहते हुए हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबकी ये इच्छा है, आप में से कितने भक्तों का यह भाव है? सबका, या वैदिक शास्त्र पर आधारित घर में रहते हुए जीवन को क्या सफल बनाना चाहते? तो नारद मुनि ने उत्तर में क्या कहा? सबसे पहले तो नारद मुनि ने कहा जो गृहस्थ आश्रम है उनको कुछ रोजी या जीव कुछ कमाई करना है, चाहे आप डायमंड बेचो, कपड़ा बेचो, कुछ धंधा करो, पर जीवता कमाना है। कई बार जब लोग इस्कॉन के साथ जुड़ना शुरू करते हैं तो घर वाले घबरा जाते हैं गृहस्थ का, कि हमारे पति या पिता धंधा तो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ नारद मुनि स्पष्ट कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाँ जीव का कमा कुछ कमाई करो। फिर आगे वो कहते हैं पर कमाई करो, ये नहीं सोचो कि इसे आपने इसका लाभ उठाना है। आप ये स्वीकार करो कि इसके मालिक कौन है, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण भक्ति एक रूप से बहुत सरल है, स्वीकार करो कि कृष्ण भगवान हर चीज के स्वामी हैं। वो है असली भोक्ता, भोक्ता नाम या के तपस्म सर्वलोकमेश्वर है। पर हमारा क्या कर्तव्य है कि हम सदा उनकी सेवा में रहे। तो युधिष्ठिर महाराज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैदिक शास्त्रों पर आधारित, क्यों? क्योंकि वेदों में है असली ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं। वैदिक शास्त्र की रचना किसने की? व्यासदेव ने, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने प्रचार के माध्यम से ये स्थापित किया है कि जो वैदिक शिक्षा है आज आधुनिक युग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने लगभग 80 ग्रंथों का अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में, जिनका आज अनुवाद लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया। और हर प्रसिद्ध भाषा में लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और इस शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। तो हम सबका यही भाव होना चाहिए कि शास्त्र पर आधारित, शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, भगवान की वाणी में कोई दोष नहीं। उदाहरण के लिए जो भी शिक्षा आपको दी जा रही है इस संस्था के द्वारा, जो शिक्षा आप शास्त्र में प्राप्त करते हो, ग्रंथ में पढ़ते हो, यह 100% शास्त्र पर निर्भर। प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया जिसे हम कहेंगे शास्त्र से स्वतंत्र है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे पहली बार तो कईयों ने उनसे कहा स्वामी जी आप जो उपदेश दे रहे हो कोई नहीं सुनेगा, आप ही हमारे जैसे अंग्रेज बन जाओ। और फिर प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं असली संदेश से मिला हूं। तो युधिष्ठिर महाराज का जो प्रश्न है बड़ा लाभदायी है और ये प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए। तो उसने क्या कहते हैं नारद मुनि कि जी अपनी कमाई करो पर वासुदेव की खुशी के लिए। तो आप कहोगे तो ये ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होगा? तो आगे नारद मुनि क्या कहते हैं, भक्तों की संगत के द्वारा, साधु संगत। और आगे जाकर नारद मुनि कहते हैं साधु की संगत में रहकर कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाओ, कृष्ण कथा सुनो। तो ये है असली साधु संगत का लाभ कि आप कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाओ। असली साधु का लक्षण क्या है कि वो शास्त्र की चर्चा करता है, शास्त्र में रुचि लेता है। तो ये है जीवन का असली लक्ष्य। सारे शास्त्र में कहा गया है साधु संगत का लाभ उठाओ, साधु संगत, साधु संगत सर्वशास्त्र का है, भाव मात्र साधु संगत सर्वसिद्धि है। बच्चों को भी जो करो, साधु संगत में रहो, साधु संगत में रहोगे तो आपको असली संदेश मिलेगा। साधु का क्या कर्तव्य है कि भगवान का जो असली संदेश है उसी को यथारूप प्रस्तुत किया जाए। बाबा जी ने जब भगवद गीता प्रकाशित की तो उसे भगवद गीता यथारूप के नाम से प्रकाशित किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे लोगों को असली संदेश दिया जाए जिसके द्वारा वो जीवन को सफल बना सकें। तो शास्त्र में कहा गया है मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए हम कहें इसका सदुपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। इसी प्रकार का उत्तर चैतन्य महाप्रभु ने भी एक नामन कुर्मा को दिया था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण समझ नहीं पाए राधा रानी जी का कितना गहरा स्नेह है उनके लिए, और ये समझ नहीं रहे वो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उनके प्रचार से पूरे समाज में लगभग सब वैष्णव बन गए थे। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान एक ब्राह्मण कुर्मा के घर रहने गए। कुर्मा ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया, चरण धोए और फिर उनसे निवेदन किया, मैं तो घर में बड़ा दुखी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, आपके साथ नहीं यात्रा करना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, घर में रहो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, गीता भागवत का अध्ययन करो, हरि नाम की महिमा का प्रचार करो और शास्त्र की महिमा का प्रचार करो। अगर तुम ये कार्य करोगे तो तुम सदा मेरे साथ ही रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये जो उपदेश है नारद मुनि के उपदेश के समान है। तो हम सबको साधन संगत में रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने पहले इस्कॉन केंद्र की स्थापना की थी न्यूयॉर्क शहर में आज से 50 साल पूर्व, और प्रभुपाद जी ने ये रविवार संडे प्रोग्राम की स्थापना की। प्रभुपाद जी को पता था कि एक दिन आएगा जब ये अधिक भक्त घर में होंगे, तो ये रविवार का प्रोग्राम है एक अच्छा उत्सव है जिसके द्वारा हमें आध्यात्मिक संदेश सुनने में आता है। आप 34 दिन में ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हो, तो ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा मांगो में से क्या वर चाहिए, और ध्रुव ने कहा अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा उत्तम भक्तों की संगत में रहूं। उत्तम भक्तों की संगत में रहूंगा तो दिव्य संदेश प्राप्त होगा जिसके आधार जिसके उपयोग से जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। कृष्ण कथा का मतलब है आध्यात्मिक विषय में, जैसे पिछले 3 हफ्तों में बालराम जयंती मनाई आपने, हाँ, कृष्ण भगवान का, फिर प्रभुपाद का जन्मदिन और राधा रानी जी की लगासी परसों। तो राधा रानी जी के अनेक गुण हैं और अनेक प्रसिद्ध लीलाएं हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि उनके मन में क्या सदा एक ही भाव है। क्या भाव? कृष्ण की सेवा। भौतिकवादी व्यक्ति राधा रानी जी को समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं ये तो कोई भौतिक प्रेम जैसा है। चैतन्य चरितमृत में अनेक श्लोकों के माध्यम से कृष्ण काव्यराज स्थापित करते हैं कि प्रेम और काम वासना, लव एंड लस्ट में महान अंतर है। भौतिक समाज में हर गाने में लगभग प्रेम शब्द होता है, आज है इंग्लिश में लव भी, पर शास्त्रों में स्थापित है असली प्रेम है क्या, भगवान के प्रति। और ये जो प्रेम हम मानते हैं साधारण जीवन में वो है काम वासना। तो राधा रानी जी के मन में सदा एक ही भाव रहता है, भगवान की प्रशंसा। वैसे तो भगवान के करोड़ों गोपियां हैं, 640 करोड़ गोपियां हैं, 640 करोड़ भारत की आबादी से 3 गुना ज्यादा। ये 640 करोड़ गोपियों में 16,000 सबसे प्रसिद्ध, ज्यादा प्रसिद्ध है। 16,108 में 108 ज्यादा प्रसिद्ध है, और आगे बढ़ा जाए तो 8 ज्यादा प्रसिद्ध है, और फिर 4 में 2, और 2 में। तो जैसे हम कह रहे थे, राधा रानी जी हैं भगवान के भक्त में सबसे उत्तम भक्त। भगवान आदि शास्त्र में कहते हैं अर्जुन से, जो व्यक्ति ये कहे कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम केवल भगवान के भक्त हैं, हम उनके भक्तों के भक्त हैं। तो अगर हमें कृष्णा प्रेम चाहिए तो हमें राधा रानी जी की कृपा की भावना होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया है कि ये जो गोपियों का भाव है सबसे उत्तम भाव है। जैसे भगवान जब द्वारका में थे, उन्हें बड़े गहरी सिर दर्द हो रही थी, नारद मुनि उन्हें मिलने आए। नारद मुनि से भगवान ने कहा, मेरी सिर दर्द हो रही है, शाम तक मुझे आपके मेरे भक्तों के चरणों की धूल ला के दो। जैसे आपको सिर दर्द होती तो आप टाइगर बाम लगाते हो। भगवान ने कहा, अब मेरे भक्तों के चरणों की धूल। नारद मुनि ने कहा, आपके तो लाखों भक्त हैं, कोई नहीं भक्त, मुझे सरलता से प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, शाम तक लेकर आओ। फिर नारद मुनि सबसे पहले गए रुक्मिणी, सत्य रुक्मिणी के घर, और कहा कि भगवान को सिर दर्द हो रही है। भगवान ने इच्छा प्रकट की है, क्योंकि भक्त के चरणों की धूल उनके माथे पर लगे। पर आज शाम से पहले, पर रुक्मिणी ने कहा, यह मेरे लिए तो असंभव है, मेरे चरणों की धूल भगवान के माथे में लगे, मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। फिर वो गए सत्य भामा के पास, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर गए ज्ञानियों के पास, गुरुओं के पास, सब ने इनकार कर दिया। ये शास्त्र में कहा गया है, अगर आपके चरणों की धूल भगवान के माथे में लगे तो आप कहां पहुंचोगे, नरक में। तो नारद मुनि आश्चर्य हो गए थे, उन्होंने सोचा था सब एकदम तुरंत चरणों की धूल लेंगे। वो लौट कर उन्होंने कहा भगवान से, सब डर गए चरणों की धूल देने से, डर था कि नरक में जाना पड़ेगा। तो भगवान ने पूछा, क्या तुम ब्रज में भी गए थे क्या नारद मुनि? सब जगह गया है पर ब्रज जाना भूल गया। तुम ब्रज में जाओ और गोपियों से पूछो। नारद मुनि जब ब्रज में पहुंचे, उन्होंने देखा राधा रानी और गोपियां बैठे हैं यमुना के तट पर, उसी दिशा में जहां द्वारका है। जब नारद मुनि को उन्होंने देखा तो कहा, आप द्वारका से आ रहे हो, कोई सूचना लाए हो हमारे लिए। वो भगवान बस निर्गत हो रही है नारद मुनि ने कहा। तो उन्होंने कहा तो या जंगल में कोई दवाई लेने आए हो भगवान के लिए? नहीं, भगवान को अपने भक्तों के चरणों की धूल चाहिए सिर पर लगाने के लिए। गोपियों ने कहा हम भक्त नहीं है। राधा ने कहा हम भक्त नहीं है। तो अगर आप सोचते कि हम भक्त बन सकते हैं तो फिर हमारे चरणों की धूल ले लो। और भगवान नारद मुनि ने कहा इसका परिणाम क्या होगा आप जानते हो, आपको नरक में जाना पड़ेगा। और राधा ने गोपी ने क्या कहा, हम जाने को तैयार हैं, हमारे मन में केवल एक ही भाव है भगवान की खुशी। और फिर उन्होंने पूछा तो आप इन्हें धूल उठाकर कैसे लेके जाओगे ब्रज से द्वारका तक? नारद मुनि ने कहा अब इन सिर पर उठाकर ले जाऊंगा। तो जब नारद मुनि वापस पहुंचे भगवान के पास तो भगवान को पूरी कथा सुनाई। तो भगवान ने कहा जो मेरे गोपियों का भाव है इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। आपने कथा पहले भी सुनी होगी, इस कथा में हमें क्या मिलता है? एक तो संदेश मिलता है कि हम भक्तों में विनम्रता का भाव होना चाहिए। राधा रानी और गोपियों ने कहा हम तो भक्त है ही नहीं। हमारी क्या स्थिति है? हम तो सोचते हैं हमारे से अच्छा भक्त है ही नहीं कोई। हम तो भगवान की खास देन है इस पृथ्वी पर। और जो असली भक्त है वो क्या सोचते हैं, हम तो भक्त है ही नहीं। दूसरा संदेश मिलता है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे स्वार्थ को क्या होगा। उन्होंने केवल एक ही सोचा, भगवान की खुशी असली खुशी है। तो भक्तों का भाव होना चाहिए भगवान की खुशी में हमारी खुशी। ये नहीं हमारी खुशी में भगवान की खुशी। हम क्या सोचते हैं हमारी खुशी में भगवान की खुशी है। जो भी वस्तुएं चाहिए हमें वो सब प्राप्त हो जाएंगे तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान की खुशी में हमारी खुशी। तो ये जो गोपियों का भाव है इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। और चैतन्य महाप्रभु यही उपदेश दिया है हमें। एक समय चैतन्य महाप्रभु अपने स्थान में बैठे थे और गोभी 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 उच्चारण कर रहे थे। एक अज्ञान संस्कृत का विद्यार्थी वहां उपस्थित था। उस विद्यार्थी ने सुना गोभी 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 गोभी। उन्होंने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या गोभी गोभी बोल रहे हो, हरे कृष्ण बोलो। चैतन्य महाप्रभु के भाव को वो समझ नहीं पाया। चैतन्य महाप्रभु ने क्रोधित होकर उनका पीछा किया। विद्यार्थी भाग गया दूसरे विद्यार्थियों के पास और ये सारे विद्यार्थी लड़ने आए चैतन्य महाप्रभु से। आगे से तुमने हमारे विद्यार्थी का पीछा किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मैं प्रकट हुआ हूं पतितों का उद्धार करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो हमारे पतित पवन हेतु सवावतार। यहाँ ऐसा अपराध किया जा रहा है। मैंने निर्णय कर लिया क्या मैं संन्यास ग्रहण करूं। तो शास्त्रों द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कृष्ण कथा में भी रुचि लेनी चाहिए। तो राधा रानी जी के लिए अनेक लीलाएं हैं, कृष्ण भगवान के अनेक लीलाएं हैं। इन्हें रुचि देंगे तो बुरे विचारों से हम बचेंगे। तो यहाँ मुनि का उपदेश है साधु संग में रहो। तो साधु की क्या पहचान है? हमारे देश में हम प्रयास नहीं करते ये देखने के लिए कौन असली साधु है कौन नकली है। सच बात, और एक दूसरे देखा जाए नकली साधुओं का ज्यादा प्रभाव है। एक समय प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन की समाप्ति पर किसी रिपोर्टर ने पूछा, इफ यू आर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो परफेक्ट व्हाई इज द हॉल फुली पैक्ड। अगर अभी कृष्ण भक्ति इतनी ठीक है तो हॉल तो भरा होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, जब असली हीरा बेच रहे हो तो कम ग्राहक में, नकली हीरे के आप मीरा रोड में तो जानते हो गए, धंधा टाइप हीरा बना। तो प्रभु ने कहा यह है असली हीरा। तो ये संदेश है केवल भाग्यवान व्यक्तियों के लिए। तो आप सब जो इस संस्था के साथ जुड़े हो अत्यंत सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यशाली हो क्योंकि आप असली संदेश के साथ जुड़े हो। आपके पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार थे जिसके कारण आप जुड़े हो इस संस्था के साथ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, जब तक आपके बड़े अच्छे संस्कार नहीं हो आप शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं करते। साकाम भक्ति को करोगे पर निष्काम भक्ति को नहीं। कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शांता भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुखानी शांता। और चैतन्य चरितमृता में कहा गया है कि जो भक्त निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो सदा शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। जो साकाम भाव से करते हैं सदा बेचैन और निराश रहते हैं। वैसे तो भगवान कहते हैं चार परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं, चार प्रकार के चतुर्विधा भजन निवाम। एक है जैसे क्या चाहिए, धन। धन तो आप लोगों को नहीं चाहिए, ऐसे में आप लोग बड़े त्यागी हो। फिर दूसरे श्रेणी का व्यक्ति कौन है, दुखी रोगी पीड़ित। बिहार में लोग रोगी पीड़ित बनते हैं, बनते हैं नहीं नहीं फिर बच्चों का हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। फिर जिज्ञासु और ज्ञान बढ़ा है। भगवान ये भी कहते हैं गीता में, कम बुद्धि के व्यक्ति देवताओं और देवियों की शरण लेते हैं, तो जो वर देवता द्वारा प्राप्त हो रहा है वह असल में किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, मेरे द्वारा। भगवान कहते हैं कुछ भी कारण हो मेरी शरण में आओ। तो शास्त्र का निर्णय है कृष्ण अति भगवान स्वयं, और कृष्ण भगवान का संदेश है इसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। तो हम सबको गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति की शिक्षा को अपनाना चाहिए। साधु संग में रहोगे तो आपका असली संदेश मिलेगा, वो है नाम का उच्चारण। इस समय जूह में कीर्तन मेला चल रहा है और आपके मीना रोड में भी शायद कीर्तन मेला 13 तारीख से शुरू होगा। तो कीर्तन मेला क्यों करते हैं? शास्त्र में कहा गया है यह नामी सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। आज छत्तीसगढ़ में आप आजमिल की कथा पढ़ते हो। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा था, ये जो पाप की इच्छा रहती है इसे कैसे हम दूर करें? जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया, हाथी तालाब में स्नान करता है साफ हो जाता है, फिर मिट्टी में बैठता है तो गंदा जाता है। उनका मन ये प्रश्न था कि ये हृदय में जो पाप की भावना रहती है इसको कैसे शुद्ध बनाया जाए। जिसके प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक कथा है, कौन सी? आंजन की कथा। तो आंजन की कथा द्वारा आप भगवान के नामों की महिमा का ज्ञान प्राप्त करते हो। भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, नामों में भगवान में कोई अंतर नहीं। तो कलयुग में कले दोषे निरे राजन प्रेक्षित महाराज चाहते थे समाज का लाभ। उन्होंने सुना किस प्रकार नरकों में कष्ट अनुभव करना पड़ेगा पापों के कारण। उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ये बताइए कैसे लोगों का उद्धार होगा कलयुग में? और उत्तर में कहा, कलयुग में दोष ही दोष है, एक गुण है, वो क्या है? कृष्ण देव कृष्ण से मुक्त संघर्ष परम कृष्ण का कीर्तन। तो भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है हम सब का, चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी, सबका ये प्रयास है ना चाहे हरि नाम का उच्चारण करें। हरि नाम के माध्यम से छेद दर्पण महाजनम, हमारे हृदय में जो काम क्रोध दो मोह मन मत्सर्य का प्रभाव है वो आस्ते आस्ते मिटते जाएगा और अपनी आनंद भी अनुभव कर सकोगे। अनुभूति वादन हम सब आनंद की खुशी में है पर ऐसी आनंद का सार माध्यम नहीं जानते। तो आप सबसे निवेदन है, एक तो आपको ये निर्णय करना चाहिए कि हर रविवार को आप मंदिर जरूर आओ। आप में से कितने भक्त हो जो हर रविवार को आते हो? इतनी भीड़ होनी चाहिए कि ऐसे लगे कि ये मंदिर छोटा बन गया है। इस समय तो लगता है मंदिर ठीक साइज का बन रहा है, छोटा नहीं है। अगर भक्तों की भीड़ बढ़ जाएगी तो फिर हमें सोचना पड़ेगा मंदिर को बड़ा कैसे बनाया जाए। तो आप सबको प्रयास करना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए रविवार को, तो सारे संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा का ज्ञान मिलेगा। साथ में हाँ प्रभु ने कहा शास्त्रों का अध्ययन, प्रभुपाद जी ने बड़े परिश्रम के साथ इन ग्रंथों की रचना की। वैसे तो आप जानते हो हम प्रयास करते हैं ग्रंथों को बांटने के लिए, तो हमारा प्रयास ये भी रहना चाहिए ग्रंथों का अध्ययन करने का। तो आप जाप करोगे अध्ययन करोगे तो तेजी के साथ भगवान कृष्ण का दोष करोगे। ये होना चाहिए हम सब का भाव, एक हम साधु संग में रहकर कृष्ण कथा में रुचि लें। कृष्ण कथा में रुचि लेंगे तो किस विषय से बचेंगे? जल्प से हम बचेंगे। और हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण है जिनका हमें नाम उठाना चाहिए। तो आप सबसे यही विनती है कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। और साधु का पहचान यह है कि वो आपको वही संदेश देता है जो शास्त्र में है, उसे स्वतंत्र नहीं। प्रभुपाद जी को भारत में अनेक सालों का संघर्ष करना पड़ा। जब अमेरिका भी गए पहले साल के लिए कोई रहने का स्थान नहीं था। एक समय प्रभुपाद जी एक शराबी के घर में रह रहे थे और वो शराबी रात के 1 बजे आया नशे में प्रभुपाद जी को मारने के लिए। तो इन ऐसे वातावरण में प्रभुपाद जी रहे पर इन्होंने भगवान के संदेश को नहीं बदला। ये नहीं सोचा कि लोगों को आकर्षित करने के लिए नियम बना देने चाहिए। तो जाप कीजिए, शास्त्र पढ़िए और साधु संग में रहिए। और जो गोपियों का भाव है आपका, जो वो तो बड़ा उत्तम भाव है, उत्तम भाव का चिंतन करोगे काम निकल उसके पहुंच पाओगे, और अगर प्रयास करोगे भगवान सहयोग देंगे। गीता में भगवान कहते हैं तो प्रयास करते हैं मेरी सेवा करने के लिए, मैं कुछ कमी भी हो तो उसे मैं दूर करता हूँ। तो राधा रानी जी बड़ी दयालु है, जब राधा रानी कहें किसी भगवान से ये भक्त श्रद्धालु है इसे स्वीकार करो, भगवान क्या कहते हैं ओके स्वीकार कर लेंगे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहले पहुंचे बॉस्टन में, तो उन्होंने देखा बॉस्टन शहर दिखाने के लिए जहाज का कैप्टन पांडे उन्हें ले गया था। तो प्रभुपाद जी ने देखा चारों तरफ माया का आकर्षण है। तो प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा आप मुझे यहाँ ले आए हो तो कौन सुनेगा आपके संदेश को, यहाँ तो चारों तरफ माया का निमंत्रण है। आगे जाकर उन्होंने कहा राधा रानी जी की असीम कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। और प्रभा जी को पूरा विश्वास था कि अगर वो शुद्ध संदेश दें राधा रानी जी की कृपा से ये योजना सफल होगी। जब प्रभा जी छोटे थे, प्रभा जी के जब पिता थे उनका नाम था गौरमोहन दे, ज्यादा धनी नहीं थे, मिडिल क्लास के आदमी थे, पर संतों की वो बहुत सेवा करते थे। तो जब ये संत घर छोड़कर जा रहे होते थे तो पूछते थे हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और गौरमोहन दे कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी जी का प्रसिद्ध भक्त बने। तो राधा रानी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या है उपाय, महामंत्र का उच्चारण। महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे द्वारा आप राधा रानी जी की कृपा की भीख मांग रहे हो। राधा ने कहीं बोला मैं हरि प्रिया, तो महामंत्र के उच्चारण से अब राधा कृष्ण दोनों के नामों का उच्चारण कर रहे हो। अगर आप उच्चारण करोगे तो हृदय शुद्ध बनेगा और असली आनंद प्राप्त कर सकोगे। तो संक्षेप में आज हमने दो प्रश्न दो श्लोक पढ़कर सुनाए थे। पहले श्लोक में युधिष्ठ महाराज आप सबकी तरफ से किसी के सारे गृहस्थ की तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बताइए कैसे हम व्यास आश्रम में रहते हुए शास्त्र वरधारे जीवन को सफल बना सकते हैं। और किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, किससे? हाँ नारद मुनि, किसी साधारण व्यक्ति से नहीं। सही वो निराद सम्मुख कंवर कपिल मुनि प्रद जन को भीष्मो पलीर भाई ऐसे कृपा बारह अधिकारी हैं, मैं एक है नारद मुनि। नारद मुनि का सदा एक ही भाव रहता है नारायण की सेवा। और जैसे होते हैं युधिष्ठ महाराज ने कहा कमाई करो भगवान की सेवा में उपयोग करो और ज्ञान साधु संघ द्वारा प्राप्त करो। और आगे अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं संत की संग में रहकर कृष्ण कथा का श्रवणम करो। और कृष्ण कथा का श्रवण करोगे तो हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। कई बार भक्त पूछते हैं हरि नाम में रुचि कैसे बढ़ेगी, आप में से कितने भक्त हो जो हरि नाम में रुचि बढ़ाना चाहते हो? सब भक्तों की सभा है। तो हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ाओ, हरिनाम में रुचि बढ़ाओगे हरिनाम पर जाप करके, जाप नहीं करोगे तो रुचि नहीं बढ़ेगी, जाप करोगे तो रुचि बढ़ेगी। कई बार लोग पूछते हैं शास्त्र में रुचि कैसे बढ़ाएंगे? शास्त्र में रुचि बढ़ेगी अगर आप प्रयास करोगे, शास्त्र पढ़ोगे तो रुचि बढ़ेगी, पढ़ोगे नहीं तो रुचि कहां से बढ़ेगी? तो प्रभुपाद जी कहते थे आप एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे। तो आप सब प्रयास करो भगवान के शरणागत होने के लिए, इसी में असली सुख। और इस संसार द्वारा यही शुद्ध संदेश दिया जा रहा है पूरे मानव समाज को। ज्यादा गिराक नहीं बनेंगे, जो बनेंगे वो असली सुधार है। और भगवान को कह देना मनुष्य नाम सास हुए थे। तो आप सबसे निवेदन है इस शिक्षा का लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.